का था, रूह वही, रूप नया।
शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर के पिछले भाग में आपने सुना के सोहराब को अचानक शैलेश जी अलंकार मिल गए। यहीं दूसरी तरफ श्रेया और सार्जेंट सलीम को कैप्टन किशन शूटिंग वाली कोठी तक ले आए। लेकिन उसी रात श्रेया चार नकाबपोशों के द्वारा अगवा कर ली गई। आखिर कौन है वो नकाबपोश और वो श्रेया को कहां ले जाना चाहते हैं? सार्जेंट सलीम ने श्रेया को ढूंढने के लिए आगे क्या किया? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ 34 किलोमीटर का ये भाग। श्रेया को कंधे पर लाद रखे बदमाश की कमर पर इस जोर की लात पड़ी कि वो जमीन पर आ रहा। इसके साथ ही दूसरी लात और दोनों हाथ बाकी तीन बचे बदमाशों के काम आए थे। इस अचानक हमले से उनमें भगदड़ मच गई। लात खाने वाला भी जमीन से उठकर तेजी से भागा। सोहराब ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया, लेकिन चारों अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। लौटकर मजदूर बने सोहराब ने श्रेया के मुंह पर से टेप हटा दिया। उसने उसके दोनों हाथ भी खोल दिए। श्रेया खौफ भरी आंखों से उसे देख रही थी। आसपास अंधेरा होने की वजह से वो उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं देख सकी थी। सोहराब भी अंधेरे की वजह से उसे पहचान नहीं पाया। आइए चलें, सोहराब ने नरमी से कहा। श्रेया जमीन से उठकर खड़ी हो गई। वो धीमे कदमों से सोहराब के साथ चलने लगी। उसके पैरों में अब भी दर्द था। कुछ दूर चलने के बाद सोहराब ने उससे पूछा, आपको वो चारों कहां ले जाना चाहते थे?
मुझे नहीं मालूम, मैं तो सो रही थी,
श्रेया ने जवाब दिया।
वो आपको कहां से उठा कर लाए हैं?
ऊपर वाले कमरे से।
मतलब आप इस कोठी में ठहरी हैं?
जी हाँ।
फिल्म में काम करती हैं?
नहीं, मैं यहाँ सार्जेंट सलीम के साथ आई हूँ।
ओह,
सोहराब इतना कहकर खामोश हो गया। उसे श्रेया की आवाज पहचानी सी तो लग रही थी, लेकिन वो यहाँ इस हाल में मिलेगी उसे इसका अंदाजा नहीं था। सोहराब ने कुछ देर बाद पूछा,
सलीम कहाँ है?
ऊपर के फ्लोर पर।
क्या तुम तेज चल सकती हो?
मेरे पैरों में जख्म है।
ओह, सोहराब और श्रेया चलते हुए किसी तरह ऊपर सलीम के कमरे तक पहुंचे। सलीम बेखबर सो रहा था। सोहराब ने उसे थपकी देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। वो गहरी नींद में था। सोहराब ने मेज से गिलास उठाया और पूरा पानी उसके मुंह पर उड़ेल दिया। नतीजे में सलीम हड़बड़ाकर उठ बैठा।
हमें यहां से तुरंत निकलना है,
सोहराब ने कहा। सलीम फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। उसके बाद उसने आश्चर्य भरी आवाज में कहा, आप यहां?
मैं भी आपसे यही जानना चाहता हूँ,
सोहराब ने मुस्कुराते हुए कहा। सलीम फिर से लेट गया और खदांटे लेने लगा। सोहराब ने उसे गर्दन से उठाकर बैठा दिया।
उठो, हमें तुरंत ही चलना है यहाँ से।
ये सारा माजरा श्रेया आश्चर्य से देख रही थी। मेकअप की वजह से श्रेया सोहराब को पहचान नहीं सकी थी। वैसे भी उसकी मुलाकात सोहराब से सिर्फ एक बार समंदर के किनारे कुछ देर के लिए ही हुई थी। सलीम उठकर खड़ा हो गया। उसने जूते पहने और फिर तीनों कमरे से बाहर निकल आए। सोहराब ने लाइट बुझाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तीनों सीढ़ियां उतरकर बाहर आ गए। अंधेरा ज्यादा गहरा हो गया था। सुबह होने से पहले अंधेरा घना हो जाता है। श्रेया को चलने में दिक्कत हो रही थी। तीनों लॉन को पार करके गेट तक पहुंचे। गेट पर गार्ड ऊंघ रहा था। गेट से बाहर आने के बाद वो तीनों सड़क पर खड़े किसी सवारी की तलाश करने लगे। सोहराब ने सार्जेंट सलीम से कहा,
तुम श्रेया को पीठ पर लादो और तेजी से यहां से निकलो।
इस बार श्रेया बिना नानुकुर के सलीम की पीठ पर लद गई और सलीम उसे लेकर तेज कदमों से चलने लगा। सोहराब भी साथ था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घोड़ा गाड़ी खड़ी नजर आई।
तुम श्रेया को लेकर इससे रेलवे स्टेशन तक चलो, मैं आता हूँ,
सोहराब ने कहा। सलीम ने तांगे वाले से बात की और वो तुरंत चलने को राजी हो गया।
साहब, रात का टाइम है, किराया डबल मतलब 100 रुपए लगेगा, तांगे वाले ने हसबे आदत सवारी बैठाने से पहले बात साफ की।
हाँ ठीक है, अब तुम 200 ले लेना, लेकिन जल्दी चलो, सलीम ने उकताए हुए अंदाज में कहा। सलीम ने श्रेया को तांगे पर चढ़ा दिया और खुद भी बैठ गया। तांगा दोनों को लेकर चल दिया। स्टेशन रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था, अभी किसी ट्रेन के आने और जाने का वक्त नहीं था। शायद सड़क पर घोड़े की टापों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। सार्जेंट सलीम को ड्रैकुला नॉवल का पहला सीन याद हो आया, जाने क्यों वो अंदर तक से हर गया। नींद पूरी ना होने की वजह से सलीम के सर में तेज दर्द हो रहा था। तांगा चलने से हवा उसे थपकी देने लगी और उसे फिर से नींद आने लगी। श्रेया उसके बगल में बैठी हुई थी, वो उसके कंधे पर सर रखकर कुछ देर बाद ही सो गई। नींद आने के बावजूद सलीम आंखें फाड़कर नींद भगाने की कोशिश कर रहा था। एक ख्याल ने उसकी नींद कोसों दूर भगा दी। उसके सामने मसला ये आन पड़ा था कि वो तांगे पर सवार तो हो गया था और उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसके जहन में जंगलियों के लिए एक भद्दी सी गाली घूमने लगी। उन्होंने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था, उसका पर्स ही नहीं रिवॉल्वर तक गायब था, कपड़े तक उतार लिए थे। उसे सोहराब पर भी गुस्सा आ रहा था, जनाबे अली को साथ चलने में शर्म आ रही थी। अरे अलग ही जाना था तो कुछ पैसे देकर जाते। अचानक उसकी सोच को ब्रेक लग गया। सोच को ब्रेक ही नहीं लगा बल्कि नींद भी गायब हो गई। उसने तुरंत ही श्रेया को खींचकर नीचे गिरा दिया और खुद भी दोनों सीटों के बीच दुबक गया। जो हुआ था उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक गोली उसके कानों के पास से आवाज करते हुए गुजर गई। उसके कुछ देर बाद दो फायर और हुए थे, फिर सन्नाटे में कुछ लोगों के भागने की आवाज उसने सुनी थी। उसके बाद सन्नाटा छा गया था। श्रेया सलीम के बगल में दुबकी कांप रही थी। उसके दिल की धड़कन इस कदर बेकाबू हो रही थी जैसे दिल सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। घोड़ा अपनी रफ्तार से भागा चला जा रहा था। सलीम काफी देर ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने गर्दन उठाकर बाहर की तरफ देखा। इस बार उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तांगे वाला गायब था तो क्या ये हमला तांगे वाले पर किया गया था? बेचारा मारा गया। सार्जेंट सलीम बुदबुदाया और उठकर बैठ गया। श्रेया को उसने सीटों के बीच में ही लेटे रहने दिया। वो तांगे वाले की लाश तलाशने लगा। सामने तांगे वाले की जगह खाली पड़ी थी, शायद लाश रास्ते में ही गिर गई, उसने अपने आप से कहा। वो गमगीन हो गया था। बेचारा अच्छा भला सो रहा था, उसे मौत खींच लाई, सलीम ने चारों तरफ देखते हुए कहा। सलीम अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद तांगा एक जगह रुक गया। सलीम ने चौंक कर सामने की तरफ देखा। तांगा स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसने श्रेया को उठने में मदद की और दोनों तांगे से नीचे उतर आए। तांगे वाला कहाँ गया? श्रेया ने पूछा। मारा गया, सलीम ने अफसोसनाक लहजे में कहा। नहीं, श्रेया ने कहा और वो अंदर तक से हर गई। सोहराब से पिटने के बाद चारों जंगल की तरफ भाग खड़े हुए। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका पीछा नहीं किया जा रहा है, इसके बावजूद वो भाग रहे थे। काफी आगे निकल आने पर चारों झाड़ियों के एक झुरमुट के पास रुक गए। झाड़ियों की आड़ में चारों जमीन पर बैठकर सांसों को दुरुस्त करने लगे। कुछ देर बाद उनमें से एक ने जेब से फोन निकाला और किसी के नंबर को डायल करने लगा। फोन तुरंत उठा और दूसरी तरफ से आवाज आई, काम हो गया? नहीं सर, फोन करने वाले ने हकलाते हुए कहा। तुम लोग किसी लायक नहीं हो गधों। उधर से ये बात इतना चीख कर कही गई कि बाकी तीनों ने भी सुनी और उनके चेहरे उतर गए। सर हम कामयाब हो गए थे, लेकिन अचानक दो आदमी कहीं से आ गए और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। उनके हाथों में रिवॉल्वर भी थी, हम किसी तरह वहां से भाग सके, लड़की भी वहीं छूट गई। फोन करने वाले ने बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया ताकि उन्हें कमजोर और बुजदिल न माना जाए। दो आदमी? दूसरी तरफ से चिंताजनक स्वर सुनाई दिया। देखने में वो कैसे थे? उधर से पूछा गया। सर अंधेरा होने की वजह से हम उनका चेहरा नहीं देख सके। ठीक है, तुम चारों सुबह होने से पहले शहर छोड़ दो, 15 दिन शहर में नहीं दिखने चाहिए, दूसरी तरफ से हिदायत दी गई। उसके बाद फोन काट दिया गया।
तुमने झूठ क्यों बोला?
बाकी तीन में से एक ने फोन करने वाले से पूछा।
तो क्या बॉस से पिटने के लिए सच बता देता?
तुम्हें अकल नहीं है, इसलिए चोंच बंद रखा करो, फोन करने वाले ने भन्नाते हुए कहा। कुछ देर तक खामोशी रही, चारों बैठे कुछ सोचते रहे। उसके बाद फोन करने वाले ने उन तीनों को बॉस की हिदायत बता दी। इसके बाद चारों उठकर एक तरफ चले गए। श्रेया का सर चकराने लगा, वो जमीन पर बैठ गई। तभी सलीम को कदमों की आहट सुनाई पड़ी। उसने पलटकर देखा तो सोहराब किसी के साथ चला रहा था। नजदीक आने पर उसने देखा कि वो तांगे वाला था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सोहराब ने आते ही पूछा,
कैसा सफर रहा बरखुरदार?
बहुत मस्त, सलीम ने बूढ़ी औरतों की तरह हाथ नचाकर जले भुने लफ्जों में कहा। सलीम के जवाब पर तांगे वाला उसे आश्चर्य से देखने लगा। सोहराब ने पर्स से 500-500 के दो नोट तांगे वाले को थमाते हुए कहा,
आप बेखौफ होकर जाइए, अब रास्ते में कुछ नहीं होगा, बस आप इस घटना का जिक्र किसी से न कीजिएगा।
10 गुना पैसे पाकर तांगे वाला खुशी खुशी सोहराब और सलीम को सलाम करके चला गया।
आप ठीक हैं?
सोहराब ने श्रेया से पूछा।
जी, थोड़ा चक्कर आ गया था।
शोलागढ़ के छोटे से स्टेशन पर इस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी। तीनों स्टेशन की तरफ चल दिए। सलीम ने श्रेया को पकड़ रखा था। अंदर जाकर एक सीट पर श्रेया और सलीम बैठ गए। सोहराब फिर बिना बताए कहीं चला गया था। सलीम भन्नाया हुआ बैठा था। पता नहीं कोई ट्रेन है भी कि नहीं, और साहब सीधे स्टेशन ले आए हैं, वो भी इस तरह कि जान जाते जाते बची, सलीम ने बुदबुदाते हुए कहा। उसका मूड बुरी तरह खराब हो रहा था।
क्या हुआ, इतने जले भुने क्यों बैठे हो?
आराम से सो जाओ, जब हम जहन्नुम पहुंच जाएंगे तो तुम्हें जगा देंगे, सलीम ने बिफरते हुए कहा।
अरे मुझे क्यों सुना रहे हो, तुमने ही मुझे इस परेशानी में फंसाया है। लॉन्ग ड्राइव पर ले गए थे मुझे, ड्राइव इतनी लॉन्ग हो गई कि खत्म होने को नहीं आ रही,
श्रेया ने गुस्से भरे लहजे में कहा। उसकी इस बात पर सलीम ढीला पड़ गया। सुबह का उजाला फैलने लगा था। कुछ दूर पर गौगाइयों का एक गौल शोर मचा रहा था। सलीम सर घुमाकर उन्हें देखने लगा। उनकी चहचहाहट भी उसका दिल जला रही थी। उसका दिमाग बुरी तरह उलट गया था। मन हो रहा था कि जोर जोर से चीखने लगे। उसकी बेबसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सार्जेंट सलीम की खोपड़ी एकदम घूम गई। सुबह 6 बजे कैप्टन किशन ने रिसेप्शन पर हार्ड कॉफी का ऑर्डर दिया और फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। वो जब निकला तो टेबल पर गर्म कॉफी उसका इंतजार कर रही थी। उसने कपड़े पहने और फिर हार्ड कॉफी का मजा लेने लगा। कॉफी खत्म करते ही वो होटल से निकल पड़ा। उसकी कार का रुख कोठी की तरफ था। उसके साथ उसका सेक्रेटरी भी था। वो होटल में उसके बगल के कमरे में ठहरा हुआ था। कुछ देर बाद उनकी कार कोठी के कंपाउंड में दाखिल हो गई। कोठी में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कैप्टन किशन आकर लॉन में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गया। उसने फोन करके फिल्म के राइटर डायरेक्टर शैलेश जी अलंकार को भी आने को कहा। इसके बाद कैप्टन किशन ऊपर की मंजिल पर चला गया। वो अकेला ही था। सेक्रेटरी को उसने वहीं लॉन में छोड़ दिया था। उसने सार्जेंट सलीम के कमरे को हल्का सा धक्का दिया तो वो खुल गया। अंदर झांक कर देखा तो कमरा पूरी तरह से खाली था। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे तो अंदाजा था कि सलीम और श्रेया अभी सोए हुए होंगे। कैप्टन किशन ऊपर के हिस्से में बने गार्डन की तरफ निकल गया। सार्जेंट सलीम और श्रेया उसे वहां भी नजर नहीं आए। उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतर आया। एक राउंड उसने नीचे के हिस्से का भी लगाया, लेकिन उसे कहीं भी सलीम और श्रेया नजर नहीं आए। कैप्टन किशन बाहर आकर लॉन में बैठ गया। उसने गार्ड को तलब किया। गार्ड ने कहा कि उसने बाहर किसी को जाते देखा ही नहीं था। दरअसल जब सोहराब, सलीम और श्रेया बाहर निकले थे तो गार्ड सो रहा था। यही वजह थी कि उसने उन्हें बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। ताज्जुब है, इतना कहकर कैप्टन किशन खामोश रह गया। कुछ देर बाद वो उठा और कोठी के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। उधर का गेट अभी भी खुला हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि इस गेट में ताला क्यों नहीं लगा हुआ है। वो गेट से बाहर निकलकर जंगल में कुछ दूर तक टहल आया। वो अकेला ही था। लौटकर उसने गेट बंद किया और फिर आकर लॉन में कुर्सी पर बैठ गया। सार्जेंट सलीम के इस तरह से अचानक गायब हो जाने से वो उलझन में पड़ गया था। कुछ देर बाद ही रसोईया नाश्ता ले आया। अभी वो नाश्ता कर ही रहा था कि शैलेश जी अलंकार की कार आकर रुकी। उसमें से बड़ी हड़बड़ी से शैलेश उतरकर सीधे कैप्टन किशन के पास आया और उसके पैर छूकर पास की कुर्सी पर बैठ गया। शैलेश अलंकार अजीब पर्सनालिटी का आदमी था। हर मौके पर उसका बिहेवियर अलग होता था। सोहराब की कोठी पर जब भी वो गया तो उसका व्यवहार कटखने बद्दर जैसा था। रात में सोहराब से वो बड़ी मिलनसारी से मिला था। उसके सुलूक से सोहराब भी एक बार चौंका जरूर था और अभी उसका व्यवहार एक आज्ञाकारी छात्र जैसा था। शैलेश चुपचाप बैठा रहा और कैप्टन किशन ने भी उसे कोई तवज्जो नहीं दी। वो आराम से ऑमलेट और पराठे खा रहा था। नाश्ता कर चुकने के बाद कैप्टन किशन ने नैपकिन से हाथ साफ किए और फिर कॉफी उंडेलकर पीने लगा। दो तीन सिप लेने के बाद वो शैलेश से मुखातिब हुआ। शूटिंग कैंसिल कर दो।
ओके सर,
शैलेश ने एक आज्ञाकारी छात्र की तरह कहा। मुझे अभी जरूरी काम याद आ गया है, मैं शहर वापस जा रहा हूँ। तुम सब भी दोपहर तक यहाँ से निकल पड़ो, शूटिंग शेड्यूल बाद में डिसाइड करेंगे, कैप्टन किशन ने उसे समझाते हुए कहा और उठकर चला गया। उसके पीछे पीछे सेक्रेटरी भी जा रहा था। शैलेश कैप्टन किशन को जाते हुए देखता रहा। कार के पास पहुंचकर कैप्टन किशन ने सेक्रेटरी से कहा, आप शैलेश के साथ ही वापस आइएगा। इसके साथ ही कैप्टन किशन कार की पिछली सीट पर बैठ गया और कार रवाना हो गई। शैलेश उलझन में पड़ गया था। उसने जेब से सुरती का बटुआ निकाला और उसमें से कुछ तंबाकू हाथ पर रखी, प्लास्टिक के शीशे से चूना निकाला और सुरती मलने लगा।
क्या डायरेक्टर साहब, सुरती खाते रहते हैं,
कैप्टन किशन के सेक्रेटरी ने हंसते हुए कहा। शैलेश ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरती मलने के बाद उसने हाथों को सेक्रेटरी की तरफ ले जाकर चार बार सुरती को पीट कर चूना झाड़ा। नतीजे में सेक्रेटरी का छींक छींक कर बुरा हाल हो गया। शैलेश खीखी करते हुए वहां से उठ गया। शैलेश का ये एक और रूप था जो सोहराब की कोठी से एकदम अलग था। बहुत ही अजीब आदमी था। दरअसल उन चिड़ियों पर एक जंगली बिल्ली ने हमला कर दिया था। ये देखते ही सार्जेंट सलीम का गुस्सा भड़क गया और वो तेजी से चिड़ियों के झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। सलीम के वहां पहुंचने से पहले ही बिल्ली ने एक चिड़िया को दबोच लिया था और रफू चक्कर हो गई थी। सलीम ने बिल्ली का कुछ दूर पीछा भी किया, लेकिन वो कब उसके हाथ आने वाली थी। चिड़ियों का झुंड पास के एक पेड़ पर शोर मचाकर अपनी साथी के लिए सोग मना रहा था। सोग मनाने के लिए तो खैर सलीम के पास भी बहुत सारी वजहें थीं। कुछ देर तक वो बिल्ली के पीछे भाग जाने वाले रास्ते को खड़ा निहारता रहा और उसके बाद निराशा भरे कदमों के साथ लौट आया। सुबह के वक्त पहाड़ी इलाकों में सर्दी बढ़ जाती है, लेकिन इस भाग दौड़ से उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। लौटकर जब वो श्रेया के पास पहुंचा तो वो जगी हुई उसका इंतजार कर रही थी। कहां चले गए थे?
बिल्लियों ने जीना हराम कर दिया है,
सलीम ने श्रेया की आंखों में देखते हुए कहा। और बिल्लों ने भी, श्रेया ने उसकी बात का भाव पकड़ लिया और उसने ये बात उसे चिढ़ाने के लिए कही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारा वो साथी कौन है? बड़ा दिलेर आदमी है, लेकिन उसकी आंखों में गजब का पावर है। आंखों की तरफ देख नहीं सकते ज्यादा देर।
कौन सा आदमी? साजन सलीम ने अनजान बनते हुए पूछा।
अरे वही जो हमें यहां तक लेकर आया है।
अच्छा, वो मेरा कार मैकेनिक है,
सलीम ने जवाब दिया।
कार मैकेनिक?
श्रेया ने आश्चर्य से दोहराया। लेकिन वो तो तुमसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे तुम्हारा बॉस हो।
वो ऐसे ही बातें करता है, 20 साल से हमारी कारें ठीक कर रहा है ना, इसलिए बड़े भाई जैसा है, कमाल का मैकेनिक है,
सलीम ने बात बनाते हुए कहा।
मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब बाय द वे, आपका वो कार मैकेनिक कहाँ चला गया अब, और हमें यहाँ क्यों लेकर आया है?
कह रहा था कि कार को रेल की पटरियों पर चलाकर हमें शहर ले जाएगा।
बहुत झूठे हो तुम। अब अच्छा, मुझे वॉशरूम जाना है। तो जाइए ना, किसने मना किया है? सलीम ने खींचे हुए अंदाज में कहा।
मुझसे चला नहीं जा रहा, तुम साथ ले चलो ना प्लीज।
ऐसा करो, मुझे गुलाम बना लो, सलीम ने आंखें निकालते हुए कहा।
सोचूंगी,
श्रेया ने कहा और उठकर उसके कंधे को पकड़ लिया। मजबूरन सलीम उसे वॉशरूम की तरफ लेकर चला गया। श्रेया वॉशरूम के अंदर चली गई और वो बाहर खड़ा झल्लाता रहा। उसे पाइप की जबरदस्त तलब लग रही थी। इन सब उलझनों में उसने कई दिनों से पाइप नहीं पिया था। अजीब बात यह थी कि उसे इसका ख्याल भी नहीं आया था। वैसे भी जब जान पर बनी हो तो बाकी सारी ख्वाहिशें पीछे छूट जाती हैं। कुछ देर बाद वो श्रेया को लेकर लौट आया। इंस्पेक्टर सोहराब वहां उनका इंतजार कर रहा था।
कहां चले गए थे?
यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सार्जेंट सलीम ने गुस्से में कहा।
आपके लिए सवारी का इंतजाम करने।
टैक्सियां क्या रेलवे स्टेशन पर मिलने लगी हैं?
टैक्सी से चलने के मेरे पास पैसे नहीं है बरखुरदार,
सोहराब का भाव चिढ़ाने वाला था।
हाँ, ट्रेन का तो ये फायदा है कि बिना टिकट भी चल सकते हैं ना,
सलीम ने तंजिया लहजे में जवाब दिया।
नहीं, मैं आपको मालगाड़ी से ले चलूंगा, उसमें टिकट का भी झंझट नहीं।
सोहराब का लहजा इस बार गंभीर था। सोहराब की इस बात पर सलीम का चेहरा गुस्से में तमतमा आया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सोहराब ये सब क्यों कर रहा है। बेहतर था कि एक टैक्सी बुक की जाती और वो उससे आराम से शहर पहुंच जाते। उसे बे इंतहा थकान थी और वो सो जाना चाहता था। उसे भूख का भी एहसास हो रहा था। सोहराब ने सलीम के चेहरे पर गुस्से के भाव पढ़ लिए थे। वो सलीम के करीब चला गया और धीमी आवाज में बोला,
गुस्सा मत हो प्यारे, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस थोड़ा धैर्य रखो, श्रेया का ख्याल रखो, उसकी जान को खतरा है।
उसकी बात सुनकर सलीम शांत हो गया। कुछ देर बाद उसने पूछा,
क्या हमें वाकई मालगाड़ी से जाना है?
जी बरखुरदार, दरअसल इस स्टेशन से अब अगली ट्रेन शाम 4 बजे ही मिलेगी,
सोहराब ने समझाते हुए कहा।
मैं स्टेशन मास्टर से बात करने गया था, उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद इधर से मालगाड़ी गुजरने वाली है। उसका यहाँ स्टॉप तो नहीं है, लेकिन वो कुछ देर रोककर हमें सवार करवा देंगे।
सार्जेंट सलीम को एक बात नहीं समझ आई कि सोहराब इस वक्त एक आम नौजवान के भेस में है। उसने स्टेशन मास्टर को कैसे इस स्टेशन पर ट्रेन रोकने के लिए राजी किया होगा। अभी वो बात कर ही रहे थे कि उन्हें ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद एक मालगाड़ी आकर रुक गई। स्टेशन मास्टर ने मालगाड़ी के गार्ड से कुछ देर बात की और फिर तेज कदमों से चलता हुआ सोहराब के पास आया और चलने के लिए कहा। स्टेशन मास्टर के इस तरह के सपोर्ट से सार्जेंट सलीम और हैरान हुआ। सलीम ने सहारा देकर श्रेया को उठाया और तीनों ही तेजी से गार्ड के डिब्बे की तरफ चल दिए। सलीम ने श्रेया को डिब्बे पर चढ़ा दिया और खुद भी सवार हो गया। सोहराब ने स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा किया और वो भी ऊपर आ गया। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन 2 सीटियों के बाद रेंगने लगी। गार्ड अपने काम से फारिग होने के बाद उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। जवाबन सोहराब भी मुस्कुरा दिया। मालगाड़ी का गार्ड एक खूबसूरत नौजवान था, काफी खुशपोश और मिलनसार मालूम होता था। नियमों के मुताबिक गार्ड को दोनों ही झंडे साथ ले जाने होते हैं, भले ही उसे हरी झंडी ही क्यों ना दिखानी हो। गार्ड के डिब्बे के 3 हिस्से होते हैं, एक छोटा सा कमरा, उसके आगे एक बरामदा और फिर एक ओपन स्पेस। देखने में यह पूरा हिस्सा काफी सुंदर होता है। ऐसा लगता है कि एक छोटा सा पहाड़ी मकान पहियों पर चल रहा है। गार्ड ने अंदर जाकर अपने लाल और हरे झंडे एहतियात से रख दिए। उसके बाद वो एक दरी लेकर बाहर आ गया।
लीजिए सर, इसे बिछा लीजिए, हमारे पास कुर्सी तो है नहीं।
ये हमारे लिए काफी है, शुक्रिया आपका। हमारी इन साथी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर कोई हर्ज ना हो तो आप इन्हें अंदर लेटने को जगह दे दें।
हाँ, वाई नॉट वाई नॉट,
गार्ड नौजवान ने श्रेया की तरफ देखते हुए अंग्रेजी में कहा। श्रेया के खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। एक शहरी बाला को लहंगे चोली में देखकर शायद उसे आश्चर्य हुआ था। मैं बिस्तर लगा देता हूँ।
बहुत मेहरबानी आपकी,
सार्जेंट सलीम ने गार्ड के हाथ से दरी ले ली और बरामदे में बिछा दी।
बैठ जाओ, नहीं तो दरी उड़ जाएगी।
सार्जेंट सलीम वहीं बैठ गया। जबकि श्रेया और सुहराब बरामदे के लोहे के खंभों को पकड़े खड़े थे। कुछ देर बाद गार्ड कागज के 3 कप और केतली में चाय ले आया। देखिए, शायद अभी गर्म हो, पिछले स्टेशन पर ही भरवाई थी। गार्ड ने सभी के हाथों में कप पकड़ा दिया और फिर उनमें चाय उड़ेल दी। चाय में सिर्फ गुनगुनाहट बची थी। सार्जेंट सलीम को चाय एकदम अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसे एहतरामन चाय पीनी पड़ी क्योंकि गार्ड वहीं पर खड़ा था। चाय खत्म करने के बाद सोहराब श्रेया को लेकर अंदर रूम में चला गया। गार्ड ने सीट पर बिस्तर लगा दिया था। श्रेया उस पर लेट गई और उसने सर से पांव तक चादर ओढ़ ली। उसके बाद सोहराब बाहर निकल आया। गार्ड रूम में ही बैठकर लिखा पढ़ी का काम करने लगा। बाहर आकर सोहराब ने दरी को बरामदे से हटाकर ओपन स्पेस में बिछाने को कहा। दरअसल इंस्पेक्टर सोहराब सार्जेंट सलीम से बात करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उनकी बातें गार्ड के कानों तक पहुंचे। श्रेया तो खैर लेटते ही सो गई थी। दोनों दरी पर बैठ गए। सोहराब ने शर्ट की ऊपर वाली जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और एक बीड़ी निकालकर जला ली। मुझे भी चाहिए, सोहराब ने उसकी तरफ बीड़ी का बंडल बढ़ा दिया। सोहराब और सार्जेंट सलीम का मालगाड़ी का सफर किस मुकाम तक पहुंचा? शूटिंग क्यों कैंसिल कर दी गई? स्टूडियो में घुसने वाले चारों कौन थे और उन्हें किस चीज की तलाश थी? जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ @34 किलोमीटर का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।